हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो आज 3 अगस्त और बुधवार, आज के दिन हमारे दो महान आचार्य, एक शिला रघुनंदन ठाकुर और दूसरे शिला बंशीदास बाबा जी महाराज, इन्होंने गौलोक धाम को गमन किया था। आज के दिन ये संसार छोड़कर भगवान के पास चले गए थे। तो जब भी कोई आचार्य का दिन होता है तो हम उनकी स्मृति में ये भजन गाते हैं। आवाज आपको दिखा रही है पीछे माताओं को, इधर सबको थोड़ा नजदीक तो नहीं आए, स्पीकर थोड़ा दूर रखा तुम। सुनो हरि को माताओं के नाम नोट कौन करते, वो माता भी आज इतने अपना राणा की पत्नी नाम लिखा है, शिवानी का नाम लिखा तुमने खाली। क्या नाम है माता जी आपका? राणा जी की पत्नी है, तुमने नाम कहा लिखा है? पहली बार मंगला राधा माता। तो राधा माता जी भी आज 10 साल के बाद मंगलारती आई हैं बड़ी हिम्मत करके, तो उनका भी मंगलारती में हार्दिक स्वागत है। तो आओ ये भजन गा लें। ये भजन हमारे आचार्य ठाकुर रोतमदास जी महाराज द्वारा रचित है, वैष्णवों की स्मृति में। जिस दिन कोई वैष्णव चला जाता है तो उसकी स्मृति में शिला नोटम ठाकुर का ये भजन गाया जाता है। इधर बात की गा लिया सबको,
ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचो, ये अनिलो प्रेम अनिलो प्रेम धन करुणा परचो, ये अनिलो प्रेम धन करुणा परचो, एनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनाता, कहाँ मोरा दास रघुनाथा पतिता पावा, कहाँ मोरा भट युगा कहाँ कबीरा, एका काले कोठा गेला तोरा नटरा, पाषाणे कुटीब माता अनिले पशीब,
जीवन का उद्देश्य केवल एक ही है, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम मिलेगा कृष्ण भक्ति के द्वारा, और वो भक्ति मिलेगी इन शुद्ध भक्तों की कृपा से। ये याद रखो, बिना भक्तों की कृपा से भक्ति नहीं मिल सकती। कल एक प्रसंग आया, प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त हुए, जिनके लिए भगवान ने इतना बड़ा ये अवतार लिया। विचार करो कितने महान ऋषि हैं। एक बार चार कुमार उन्हें मिलने आए, सनक, सनंदन, सनातन और संत। ये पहले जब भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो चार कुमार पहले ये मानसिक पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, और ये छोटी अवस्था में ही रहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने इनको कहा था कि आप सृष्टि की रचना करो, सृष्टि बढ़ाओ, उन्होंने मना कर दिया था। कहते नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे, हम तो आत्मदर्शी बनेंगे। तो चार कुमार प्रहलाद जी को मिलने आए, ये बड़ी कृपा थी इनकी। उस समय प्रहलाद महाराज अपने को भजन भक्ति में लगे हुए थे, तो उनको सूचना दी गई कि चार कुमार आए हुए हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि उन्होंने सूचना दी कि उनको बोलो मैं अभी भजन भक्ति कर रहा हूं। जब ये कहा कि तो चार कुमार चले गए। चार कुमारों की भी कृपा चाहिए हम सबको। चार कुमार चले गए, एक वैष्णवों का सम्मान नहीं हुआ ना। जब चले गए तो प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त, देखो विचार करो, उनके मन में इतनी भक्ति के जिनके लिए भगवान ने इतना दिव्य अवतार लिया। हम सब नृसिंहदेव को पूछते हैं ताकि हमारी भक्ति के भी विघ्न विनाश हो। तो वैष्णव अपराध हो गया, वैष्णवों को सब काम छोड़ के मिलना चाहिए, और चार कुमार तो अवतारी पुरुष हैं, उनको तो हर हालत में मिलना चाहिए। थोड़ी प्रहलाद महाराज से करती हुई क्या होगा, जब वैष्णव रुष्ट हो गए चले गए तो प्रहलाद महाराज के मन में क्या आया, अपराध हो गया। उनके मन में आया कि विष्णु जो है इसने सदा, प्रहलाद महाराज असुर कुल राक्षसों के कुल में प्रकट हुए थे, बाप राक्षस सारा राज्य राक्षसों का, कि विष्णु भगवान का काम खाली राक्षसों को मारना है, और जब भी कोई उनको राक्षस मिलता है उनको मार देते हैं वो, और देवताओं की रक्षा करते हैं। कोई भक्ति नहीं करूंगा मैं उनकी, मैं पहले विष्णु भगवान को मारूंगा, मन में ये आ गया उनको। क्यों आया ऐसा मन में, क्योंकि वैष्णव अपराध हो गया, वैष्णव की कृपा नहीं मिली, इतना बड़ा भक्त भी उसके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने जो है आदेश दे दिया, जब हम विष्णु भगवान पर चढ़ाई करके उनका वध करेंगे। तो तैयारी हो गई, विष्णु भगवान घटघट के वासी भगवान ने देखा, भाई इस प्रहलाद को मैंने अपनी गोद में बिठा के रखा था नृसिंहदेव के रूप में, और इसको मैंने इतना प्यार किया, तो मैं इस पर कैसे अपना सुदर्शन चक्र चला के इसका वध करूंगा। बड़ी भीषण परिस्थिति खड़ी हो गई। उस समय नारी जी को बुलाया भगवान ने, नारी जी को सारी बात बताई, नारी जी ने प्रहलाद जी को समझाया, तो प्रहलाद जी कहते हैं देखो ये तो खाली राक्षसों को मारते हैं, मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और मारूंगा। तब प्रहलाद जी ने अपना, नारी जी ने ध्यान लगाया क्या कारण, इतना बड़ा भक्त, और प्रहलाद जी नारी जी के शिष्य हैं, ध्यान लगाया तो देखा ओहो इनसे अपराध हो गया, चार कुमार आए थे उनका सम्मान नहीं किया। कहा कि देखो प्रहलाद, चार कुमार आपके पास आए थे, आपने उनका सम्मान नहीं किया, ये अपराध है आपका, उनसे क्षमा मांगो। जब ऐसा किया उन्होंने, एकदम विचार उनके बदल गए, एकदम वो नॉर्मल हो गए। तो देखो ये उदाहरण इसलिए होते हैं कि जब भक्तों की कृपा ना मिले, किसी का भी दिल बिना बिला बड़ा किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अभी जैसे लोग मांसाहार करते हैं तो बेचारे पशु को इनका कोई बुरा थोड़ा कर रहे हैं, जैसे आप पक्षी हैं, मुर्गा हैं, या फिर वो कोई और अपने जो बकरे हैं या भेड़े हैं, वो कोई बुरा थोड़ा करते हैं इनका। जब लोग मार के खाते हैं तो उनकी बदवाएं लगती हैं। जो लोग मांसाहारी हैं वो भक्ति नहीं कर सकते, जो भक्ति नहीं कर सकते उन्हें भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता, और जिन्हें कृष्ण प्रेम नहीं मिले उन्हें नर्क मिलता है, उन्हें 84 लाख योनियां मिलती है। तो वैष्णवों की कृपा होनी चाहिए। तो रघुनंदन दास ठाकुर परम वैष्णव है, बंसीदास बाबा जी परम वैष्णव है, बड़े महान वैष्णव प्रभुपाद जी ने हमें दिए, जितने भक्त वैष्णव हमारी संप्रदाय में है, मेरे ख्याल में और संप्रदायों में हो सकते हैं, इतने नहीं हो, बड़े भक्त हैं, ये संप्रदाय भरी पड़ी है। इसलिए महाप्रभु जो कलियुग के ठाकुर हैं, कलियुग के लोगों के कल्याण के लिए जो भगवान आए हैं, उन्होंने इस संप्रदाय को चुना प्रकट होने के लिए, और दूसरी संप्रदाय में भी वो प्रकट हो सकते थे लेकिन नहीं हुए। तो ये संप्रदाय बड़ी महान है, और ये वैष्णव बड़ी महान है और बड़े दयालु हैं। अभी चार कुमारों ने तो प्रहलाद जी को कुछ नहीं कहा, चले गए बेचारे। चार कुमारों का आना ऐसा है जैसे भगवान का आना है, चले गए तो अपराध हो गया।
तो वैष्णवों की स्मृति में ये भजन शिला रोहतम ठाकुर ने लिखा है, सुपरिषद भगवत विरहा जनित विलाप। रोहतम ठाकुर के पूर्व काल में वैष्णव हुए, कुछ ये सारे वैष्णव महान हैं, कुछों के नाम वो उसने डाल पाए। जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहां। मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहां। शिला स्नातन कहां है। पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहां है। मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहां है। और शिला कृष्णदास कविराज कहां है। महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहां चले गए। तो नरोत्तम ठाकुर के राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, लेकिन बड़े महान वैष्णव, बड़े महान, कुटिया में रहते थे, सब कुछ छोड़ दिया, कोई भौतिक सुख से उनको लगाव नहीं। तो इन सब वैष्णवों का स्मरण करके वो क्या कहते हैं, ये उनका भाव है। मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फूट डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा। श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। इन सब की स्मृति में उनकी दिव्य आंखों से अश्रुपात हो रहा है। बोलो शिला नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की। रघुनंदन ठाकुर एक बार किसी उपचार के लिए, उपचार इलाज के लिए मुकुंददास जी को उनके जो छोटे बेटे थे रघुनंदन जी ने भगवान का राजभोग दिया। उनके परिवार का जो निगरा थे वो थे गोपीनाथ भगवान। रघुनंदन जी ने सब कुछ समय पर बनाया था बड़े ध्यान से और भी बड़ी भक्ति के साथ। तो जब उन्होंने भगवान को ये भोग लगाया तो वो अपने पिताजी को याद करने लगे, पिताजी का जो आदेश था उसको याद करने लगे। क्या पिताजी ने क्या कहा था कि ये देखना कि भगवान उस भोग को स्वीकार करें खाएं, ये कहा। रघुनंदन जी रोने लग पड़े जब उन्होंने देखा कि भगवान ने भोजन भोग तो लगाया और खाया नहीं, भगवान की जो थाली है उसमें वैसे के वैसा पड़ा हुआ है। तो गोपीनाथ में गोपीनाथ रह नहीं सके। रघुनंदन जी जो थे मुकुंद दास जी के सपुत्र थे, तो गोपीनाथ भगवान रह नहीं सके। रघुनंदन जी रो रहे हैं, दिव्य पिता और दिव्य संतान मुकुंदा जी को जाना पड़ा और उन्होंने अपने सुपुत्र रघुनंदन को कहा बड़े भाव से, उन्होंने बड़े प्रेम से त्याग के पर पिताजी ये कह गए थे कि देखना कि भगवान जरूर भोग लगाएं खाएं। जब गोपीनाथ भगवान ने खाया नहीं तो वो रोने लग पड़े, बार बार घंटी बजाते हैं कि भगवान आके भोग लगाए, क्योंकि पिताजी ने ऐसा कहा है। जब वो रोने लगे तो भगवान गोपीनाथ उनके परिवार के विग्रह उनसे रहा नहीं गया। क्या हुआ, घंटी बजाते हुए उन्हें भगवान गोपीनाथ से कहा खाओ खाओ, और जोर जोर से रो रहे हैं। देखो कितने महान थे, अभी आगे वर्णन आ रहा है, कितने महान थे रघुनंदन जी। पिता भी महान, सपुत्र भी महान। तो उनको अपने पिता के गुस्से से डर लग रहा था, पिताजी नाराज हो जाएंगे कि वो भगवान को भोग नहीं करा सका, भगवान ने खाया नहीं। तो गोपीनाथ जो हैं बच्चे का भाव देखकर, रघुनंदन जी बच्चे थे सब, उनका भाव देखकर तो भगवान प्लेट में से सब कुछ खा गए, पहले टूटे भगवान सब कुछ खा गए और कुछ नहीं प्लेट में रहने दिया। अभी जब मुकुंद दास रघुनंदन जी के पिताजी, ये भी बड़े शुद्ध भक्त थे, वो जब वापस आए उन्होंने गोपीनाथ का महाप्रसाद मांगा कि भगवान को जो भोग लगाया तुमने महाप्रसाद दो मेरे। रघुनंदन जी ने कहा कि भगवान ने सब कुछ खा लिया, तो मुकुंद दास जी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि बेटा फिर से तुम भोग त्याग करो और भगवान को खिलाओ। तो रघुनंदन जी ने क्या किया कि फिर से बनाया और भगवान को अर्पण किया। रघुनंदन जी ने और पिताजी मुकुंद दास जो है छुप के देख रहे थे, उनको भगवान गोपीनाथ को लड्डुओं का भोग लगाया था और भगवान ने इस समय खाली आधा लड्डू खाए, क्योंकि प्रसाद देना था ना, गोपीनाथ भगवान ने केवल आधा लड्डू खाया। मुकुंद जी समझ गए कि भगवान ने आधा लड्डू जो है क्यों खाया, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत खा लिया था ना, जितना भोग लगाया था सब खा लिया था, पहले जो उन्होंने उनको अर्पण किया था। तो एक दिव्य भाव से प्रसन्न होकर मुकुंददास जी ने अपने दिव्य पुत्र को गले से लगा लिया। और जगन्नाथपुरी में गौरांग महाप्रभु बड़े प्रेम से मुकुंददास जी को ये कहते थे, क्या कहते थे कि पिता कौन है और बेटा कौन है, ये क्यों कहते थे? अब ये बड़े समझने की बात है। मुकुंददास जी तो शुद्ध भक्त थे, इसलिए वो ठीक जवाब दे पाए। उन्होंने कहा, प्रभु रघुनंदन जो है वो मेरा पिता है, क्यों बेटे को पिता क्यों कहा? क्योंकि मुझे उसने कृष्ण भक्ति दी है, मेरे पुत्र ने मुझे कृष्ण भक्ति, ये मेरा पिता है, मैं इसका पुत्र हूं। विचार करो, रघुनंदन जी इतने महान थे और महाप्रभु का उत्तर मुकुंददास जी ने बिल्कुल ठीक दिया, क्योंकि मुकुंददास जी शुद्ध भक्त थे लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को पिता का। तो कृष्ण लीला में रघुनंदन जी का वर्णन आ रहा है। यहां पर कंदर्प नाम की मंजरी थे या फिर उनको प्रद्युमन, चतुर्व्यूह जो भगवान के अवतार हुए में वो प्रद्युमन थे, उनकी जो समाधि है 64 समाधियों के बीच में। तो आप जरा विचार करो, जिनकी प्रार्थना करने पर भगवान आके खा ले, कितने महान हैं। हमारी प्रार्थना से भगवान क्यों नहीं खाते? हम महान नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारे मन में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मस्तक ईर्ष्या दंभ कपट ये सब भरे पड़े। जब इनसे मन मुक्त हो जाएगा, जैसे शिला नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, विषय या छाड़ी या कवे शुद्ध हवे मना, कवे हमा हे रब श्री वृंदावन। हे मेरे मन, तू विषय विकारों का त्याग कब करेगा और शुद्ध हो जाएगा? जब तक हमारे मनों में, मेरे मन में, आपके मन में, इनके मन में, उनके मन में विषय विकार है, तब तक मन शुद्ध नहीं होता। सारी बुराइयों के जड़े विषय विकार है, सारे पाप यही करवाता है काम। इसलिए भगवान ने कहा है ना, तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन को उत्तर दिया, अर्जुन ने प्रश्न किया, श्री अर्जुन उवाच, अथ केना प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाशन्यावलादिवा नियोजिता। हे प्रश्नमंशी, जीव ना चाहता हूं अभी पाप क्यों करता है? ऐसे लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाचनो महात्पापा विदीयनम जी वैरी नाम। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु क्या है? काम।
तो फिर ये प्रश्न उठता काम है क्या चीज ये। तो दिव्य पुरुष शुद्ध भक्त भगवान के प्रभुपाद जी समझाते हैं ये काम जो है कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। हम सब कृष्ण के प्रेमी हैं लेकिन हम लोगों ने मनमर्जी करनी चाहिए। भगवान स्वतंत्र हैं, हम उनकी संतान, हम भी स्वतंत्र। भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का हम लोगों ने दुरुपयोग किया तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते किसी से। भगवान ने कहा अच्छा तू फिर मेरे साथ प्रेम नहीं करना चाहता, तेरी इच्छा है, तो यहां पृथ्वी में हम आ जाते हैं। पृथ्वी में जितने लोग हैं ये सारे हम सब अपराधी हैं अपने भगवान के चरणों में, लेकिन हम अपराधियों को ही भगवान यहां से निकालने के लिए आते हैं। स्वयं आते हैं, अवतार लेते हैं, रघुनंदन जैसे वैष्णवों को भेज देते हैं, मुकुंदास जैसे वैष्णवों को भेज देते हैं। तो ये भगवान की अपार कृपा है, पर मेरी कृपा भी मेरे पर होनी चाहिए। अगर मैं अपने पर कृपा नहीं करूंगा तो कैसे मेरा उद्धार होगा। मैं स्वयं अपना शत्रु बना हुआ हूं, मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे भोग विलास चाहिए, है मुझे अपने इंद्रियों का तर्पण करना है, खाना पीना सोना है, कैसे फिर भगवान की कृपा होगी। यही तो दोष है बहुत बड़े जो हमको भगवान से दूर किए हुए। तो ये जो काम है भोग विलास जो है ये जब हम भगवान से अलग हो गए यहां तो इस नरक में ये जो कारागार है यहां थोड़े आके भगवान भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में भी हैं, विग्रह रूप में भी वो प्रकट होते हैं। लेकिन जैसे गौलोक धाम में वैकुंठ लोक में भक्तों से बातें करते हैं ऐसे नहीं। तो कृष्ण प्रेम का जो विकृत रूप है वो है ये काम, और कुछ नहीं हुआ संघर्ष। कृष्ण प्रेम का विकृत रूप काम है। तो फिर से हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, भगवान के चरणों में समर्पण कर देंगे, उनके लिए जिएंगे, उनके लिए मरेंगे, उनको अपना जीवन का केंद्र बना देंगे। अब देखो जैसे अर्जुन भगवान के लिए जिए, भगवान के लिए मरे। भगवान ने गीता में समझाया युद्ध करो तो अर्जुन ने पहले तो हाथ खड़े कर दिए, मैं परिवार के लोगों से कैसे लड़ूं। फिर भगवान ने समझाया क्यों लड़ना है, सब दुष्ट है, ये दुर्योधन दुष्ट है, ये अच्छा नहीं है, ये पाप किए हैं इसने। समझ आई अर्जुन को तो कहते हैं अच्छा प्रभु कर से वचनम तबा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो अर्जुन ने अपने परिवार के लोगों को नहीं मारा, अपने लिए नहीं, कृष्ण भगवान के लिए। कृष्ण जो कहते हैं वही ठीक है, हम जो कहते हैं वो गलत है। तो अर्जुन महान वैष्णव भक्त, इसलिए तो भगवान के साथ जब अवतार भगवान लेते हैं तो प्रकट होते हैं भगवान। तो हमें इस काम ने, इंद्रियों के तर्पण ने भगवान से अलग किया हुआ है। अब इंद्रियों का तर्पण, अभी देखो ये बच्चे हैं सब इंद्रियों के तर्पण में लगे हुए हैं, जन्म अच्छा नहीं है ना, मां बाप अच्छे नहीं मिले, लेकिन फिर भी कोई इनका पुण्य भी है जिसके कारण ये भगवान की शरण में आए, भगवान मौका दे रहे हैं इनको भक्ति करने। अभी देखो हम ये कह सकते हैं हमें बड़े अच्छे मां बाप मिले, मां बहुत अच्छे मिली, बाप भी अच्छे थे, किसी का उन्होंने पैसा नहीं खाया, किसी को धोखा नहीं दिया, तो हम बचपन से ही तीन व्रत रखते थे छोटी सी उम्र से, एतवार सोमवार मंगलवार तीन व्रत रखते थे और इतवार के दिन हमारा मौन होता था, किसी से हम बोलते नहीं थे। गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, इंद्रियों की तरफ, और ये सोचते थे कि हम शादी नहीं करेंगे कभी भी। बचपन में ही ये विचार था। हमारा एक मित्र था, हम उसे कहते थे भाई शादी क्या करेंगे, एक दिन तू भी बुढ़ा हो जाएगा, वो भी बुढ़ी हो जाएगी, वो भी मर जाएगी, तू भी मर जाएगा, शादी हम यहां नहीं करेंगे, वैकुंठ में जाके शादी करेंगे, और ना वो बुढ़ी होगी ना हम बुढ़े होंगे, ऐसे एक विचार था बच्चों। शादी का तो घर से क्यों भागे थे, जबरदस्ती कर रहे थे देखिएगा शादी करने के लिए। तो बचपन से ये विचार कैसे आए, संस्कार मिले, माता पिता अच्छे मिले। इनमें से एक भी बच्चे को संस्कार नहीं है, क्या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, क्या करें, उन पर दया करनी पड़ेगी। मौका भगवान उनको दे रहे हैं जो बड़े ही उदंड में जाए भाई, फिर मरे क्या होगा उनको, आवागमन में जाएंगे, गुंडागर्दी बदमाशी करेंगे, यह मौका है इनको, ये भक्ति से। तो पहले संस्कार हुआ करते थे मां बाप के कारण, आज संस्कार खत्म हो गए, बाप ही बाप। तो प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से पुनः हम संस्कार उनको जागृत कर सकते। अभी देखो जैसे यहां बंसी आया हुआ है, बचपन से हम इसको जानते हैं, इसकी माता बड़ी भक्त, वो देवी है बेचारी, बड़ी सीधी, ये मां के संस्कार हैं, बाप के नहीं बिल्कुल, ये कह रहा बंसी नहीं, मां के संस्कार, इसके बाप को भी मैं अच्छी तरह जानता था, लेकिन मां बड़ी भक्त। अभी बेचारी आ नहीं पाती, उसको लग गई है, लेकिन पुराने मंदिर में नियम से आना उसके दर्शन करने के लिए, सीधी सादी, उसको मैं बचपन से जानता हूं, कुछ बोलना नहीं, शांत स्वभाव। तो मां बाप के संस्कार बच्चों को मिलते हैं। तो देखो अभी रघुनंदन ठाकुर जो है, उनके पिता शुद्ध भक्त, वो अपने पुत्रों को कह रहे हैं ये मेरा बाप है, मैं इसका बेटा हूं, क्योंकि इसके द्वारा मुझे कृष्ण प्रेम मिला है, मुझे कृष्ण भक्ति मिली है। उन्होंने कहा देखना भगवान को भोग लगाना, देखना भगवान खाए, ऐसे सदान भाषा में काम को रो रहे, रोने लग पड़ा बच्चा रघुनंदन जी महाराज, रोने लग पड़े, नहीं खाएंगे मेरे पिताजी नाराज हो जाएंगे, भाव है, प्रेम है, ऐसी कई घटनाएं हैं। तो भगवान ने आते सब खा लिया, आपने जब प्रसाद मांगा तो भगवान ने खा लिया सारा। वो देखो मेरा बेटा झूठ तो नहीं बोल सकता है, अच्छा फिर बेटा फिर भोग पर लड्डुओं का भोग लगाया, तो भगवान ने अभी आधा लड्डू खा जाए तो चुप करके मुकुंददास जी तब तो भगवान के दर्शन कर सके, वो भी शुद्ध भक्त है, देख रहे थे। तो उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया के, जब महाप्रभु उनको पूछते थे कौन बाप कौन बेटा, कहते कि मेरा बाप और मैं इसका बेटा, बेटा बाप और बाप बेटा, ये हमारी विलक्षण संस्कृति जिसको हमारे नेता लोग खत्म कर रहे हैं, और हम कोई कुछ नहीं कर रहा उसके लिए, बड़ा पाप लगेगा। हम सबका कर्तव्य बनता है इन लोगों को हटाने के लिए। जैसे अर्जुन के समय पापी इकट्ठे हो गए, दुर्योधन आदि सारे मारने, जो दूसरों को मारना चाहता है वो पुण्यात्मा है। दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की, दुर्योधन के बाप ने बेटे का साथ दिया, उसने धृतराष्ट्र में जो अंधा था उनकी पत्नी की बेइज्जती की, लेकिन भगवान थोड़ा होने देते थे अपने भक्तों की बेइज्जती। तो भगवान जो है उनको कह रहे मारो, ये सब दुष्ट है, कैसे तुझे सब समझाया। तो अभी ये जो अब उस समय सब लीडर थे, अभी दुर्योधन राजा बन गया, पीजिएगा तो बड़ा पाप फैलाएगा, मार दो उसको, नुआ दिया, और वो बड़ा कठिन था उसको मारना, लेकिन जिसे भगवान मारना चाहे उसे कोई नहीं बचा सकता,
इसलिए महाप्रभु ने बड़ा अच्छा कहा है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करे उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। दुर्योधन को भगवान मारना चाहते थे, कारण उदृष्ट था, पापी था। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, पापियों के खिलाफ बोलना चाहिए हमको। अर्जुन से नाराज हुए, अर्जुन ने कहा मैं तो भीख मांग के पेट पालूंगा, मैं रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा। भगवान नाराज हुए, कह रहे कहती तू बातें करता है, बड़ा ज्ञानी बनता है और अज्ञानियों वाली बातें करता है। तो अब ये जो हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं सारे भारत को। इनकी कृपा से मैंने वर्ल्ड ट्रैवल तो किया, वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है, फिर भी अमेरिका, कनाडा, यूरोप, वेस्ट इंडीज, अफ्रीकन देश, उनमें मैं गया देखा, भारत जैसा कोई देश नहीं है और भारत जैसे नेता भी कहीं नहीं है। कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपने अपने, कल को ये सब जब बर्बाद कर देंगे तो क्या करोगे आप भी नरक में, और ये तो नरक में जाएंगे, सबको लेके जाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है इनके खिलाफ बोलना और अच्छे लोगों को आगे लाना, नहीं तो गति अच्छी नहीं है, दुर्गति है। जैसे कहा ना, गीता का सार ये निकलता है कि जुल्म करना पाप है और जुल्म को सहना महापाप है। जो सहन करते हैं महापाप करते हैं। भीष्म पितामह वो बड़े अच्छे थे, लेकिन दुर्भाग्य से साथ उनका था दुष्ट। दुष्टों के साथ होने के कारण उनको भी मरना पड़ा, सारे शरीर में बाण लग गए उनके, बाणों के शैया पर उनको सोना पड़ा, बड़ा कष्ट। समय आने पर उन्होंने शरीर त्यागा अच्छे से, ठीक समय पर। तो अभी जब बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं तो द्रौपदी आई, माता द्रौपदी पांडवों की पत्नी, तो उन्होंने प्रश्न किया था, पितामह अभी तो आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, जब दुर्योधन के कहने पर दुशासन मुझे वस्त्रहीन कर रहा था, आप वहीं बैठे थे, आपने कुछ नहीं कहा, अभी आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, तब क्या उत्तर था? पितामह का उत्तर बड़ा अच्छा सुनो, ना कि बेटी मैंने दुष्टों का संग किया, उनका उसका अन्न खाया था मैंने, आज मेरे शरीर से सारा खून निकल चुका है, शरीर से खून बह गया सारा, सारे शरीर में पानी पान लग गई, सारा खून निकल चुका है, इसलिए मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। भगवान भी उनके अंतिम समय में पास में आए थे, वो कृष्ण को कृष्ण समझते थे, दुर्योधन तो कृष्ण को मारना चाहता था। तो हम समझे कि जो गलत लोग आ गए हैं, भगवान ने करके दिखाया, भगवान चाहते चक्र छोड़ देते, मार देते, नहीं, भगवान ही ऐसा करते, युक्ति से तरीके से लोगों को समझाकर, अर्जुन को समझा करके क्यों मारना है, क्या करना है, गीता का ज्ञान हमारे लिए छोड़ दिया, हमारे मार्गदर्शन के लिए कि हम सब इस पर चलें और नर्क में जाने से बचें। ये तो सब नर्क में जाने की तैयारी कर रहे हैं, बुरी हालत हो रही है, बुरी हालत, पाप ही पाप, सबसे बड़ा पाप है ये काम, स्त्री आकर्षण, पुरुषाकर्षण, इसको ये नेता लोग बढ़ावा दे रहे हैं, कहते हैं शादी से पहले लड़के और लड़की साथ रहते कोई बुराई नहीं, अंग्रेजों में रहते हैं उनकी दुर्गति है, यहां भी शुरू कर दिए लोगों, अब कितना दुर्भाग्य है, दो लड़कियों ने आपस में शादी कर ली, बता आपको अभी भी खबर दी है, दो लड़कियों ने आपस में शादी कर ली, पहली शादी हुई लड़की लड़की में, लड़का लड़के से शादी कर रहे थे, सुना आपने, ये विदेशों में है आम, अमरीका कनाडा, इसलिए बेकार है वो देश,
लेकिन यहां भी एक पहली शादी होगी और उसको जो कोर्ट है मान्यता दे दी उसको। बड़ी गति खराब हो रही है, इसलिए जागो। अगर सदगति करानी है तो आंखें खोलो। अगर दुर्गति करानी है तो आंखों को बंद रखो। अच्युत बातें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो आओ दूसरे वैष्णव जो आज के दिन धाम में गए हैं, बंसीदास इधर, बंसी वदनानंद ठाकुर, तो जो इनका जीवन पढ़ते हैं मेरे का थोड़ा सा अंतर दिख रहा है मुझे। जब बंसी वदन ठाकुर जो है ने एक ही है, यही है, ये चैतन्य महाप्रभु और श्री अद्वैताचार्य प्रभु जब इनके घर में रह रहे थे बंसीदास बाबा जी जो हैं, चैतन्य और अद्वैता प्रभु जब इनके घर में रह रहे थे, जब माता विष्णुप्रिया धाम को चली गई जिनका उनका तिरुभाव हो गया, बंसीदास जी जो महाप्रभु के विग्रह थे कोलद बीपा जो है वो अभी नवद्वीप की जो शहर है पहले उसका कोलद द्वीप, उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो विग्रह थे उनकी प्राण वल्लभा के साथ भगवान की कृष्ण की जो मूर्ति थी बंसीदास बाबा जी ने वो उनकी पूजा शुरू कर दी। बंसीदास जी ने बड़ी सुंदर कविताएं लिखी और भजन लिखे। ये जो गौड़िया हमारा जो दर्शन है, गौड़िया वैष्णव दर्शन जो सबसे महान है, उसके बारे में बताया। इनका नाम बंसी क्यों था? क्योंकि ये कृष्ण भगवान की मुरली के अवतार थे। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि इन्होंने जो भजन गाए हैं, इन्होंने जो लिखा है उसमें बड़ा भाव है, क्योंकि बंसी जिसे भगवान अपने मुखारविंद पर रख करके उसे बजाते थे। बंसी भगवान की इतनी दिव्य वो अधरामृत पान करती थी भगवान की मुखों से। तो बंसीदास बाबा जी, इनका नाम ही बंसी वदनानंद ठाकुर है, ये भगवान की मुरली के अवतार थे। बोलो बंसीदास बाबा जी महाराज की। भगवान की बंसी का एक भजन है, एक दो लाइनें आप उसकी बोल लो। नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंदलाल बच्चे ताली नहीं बजाएंगे, हरि बोल, ताली नहीं बजाएंगे। नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंद दिला पत्थरन ढाल के निधाल कर गई, दिला पत्थरन नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। भगवान की बंसरी के एकाध कमाल, बड़ा सुंदर भजन है ये। भला बुढ़े ते जवाना दी भी कल कदिए, भला बुढ़े ते जवाना दी भी कल, निके निके नौनिहाल भी निहाल कर गई, निके निके हाल भी निहाल करे नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई नंदलाल।
बड़ा सुंदर भजन है इसमें, बस भगवान की बंसरी का कमाल तो बंसी का वंशी वदन बाबा जी बंसरी के अवतार थे, उनके भजन उनका लिखा हुआ बड़ा भाव आनंद आता है। ये सारे वैष्णव महान है, इनकी कृपा से अगर इनके चरणों की धूली यानी कि इनकी कृपा हम सबको मिल जाए हम सब भी महान बन सकते हैं। और अपने भगवान के पास गौलोक धाम में जाकर उनकी नित्य सेवा में प्रवेश कर सकते।
बोलो जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, बोलो वंशीदास बाबा जी महाराज की।
कोई प्रश्न किसी को टाइम तो ज्यादा नहीं है, एकाध प्रश्न पूछ सकता है।
बातें सब समझ में आई आपको आदि समझी? कोई प्रश्न?